ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। फिर उधर से लाइन पकड़ लिया, भ्रमण करते करते यमुना किनारा, इधर उधर यत्र तत्र भ्रम चलते हुए, ये कुटी वो कुटी, एक और भी भगत लोग जहां तहां मिल जाए। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक किसान भगत ने कहा, अरे दिन का 12 बजे थे, कहा पेड़ के नीचे बैठे हो, चलो वो गांव दिखाई देता, चलो कुछ भिक्षा भवन हो जाए। तो महाराज बोले, तू क्यों चिंता करत है, भगवान जी के डंडा खटखटाई है, वो खुदे आके खवाई। बोले अच्छा महाराज, कह के चला गया। 1 घंटे में भोजन लेके वही चला हुआ, ले महाराज प्रसाद पाए लो। बोले तू ही चला हुआ? बोले हाँ महाराज, हम ही के डंडा खटखटाए हैं भगवान। महाराज की बात सब विलक्षण रहे एकदम। अरे 2-3 दिन तो स्कूल गए रहे, कहां तक पुष्कल भाषा पढ़े। ऐसे ही कतो निमज्जन कतो प्रणामा कतो विलोकत मने अभिरामा, आगे इसी तरीके से चलते रहे। महाराज की भाषा सुन के भगत बहुत खुश रहे, उन्हें मानो इतनी पुष्कल भाषा कभी कभी सुनने को मिलती है। आगे एक बढ़े, आगरा के करीब पहुंचने पर एक कुटिया में एक महापुरुष बैठे थे, वो भोजन देने लगे, लेकिन उन्हीं के मुंह से निकल गया, महाराज हम मुसलमान फकीर हैं, क्या हमारे हाथ का भोजन आप करेंगे? दे देता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन लगा हिंदू मुसलमान मान की व्याख्या करने। आप तो परमहंस है महाराज, आपको तो कोई भेद नहीं है? बोले हमें तो नहीं है, तुम्हें है कि नहीं? बोले नहीं, हम मुसलमान है, हमें क्या भेद हो सकता है? बोले अच्छा नहीं है तुम्हें भेद, तो कहो 4 बार राम 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 कहो। तू न कहे, चुप एकदम। तो महाराज बोले, जब तुम्हें इतना भेद है तो भला तुम्हारी रोटी हम कैसे खा सकते हैं? तो कुछ देर बाद बोला, राम 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 राम, ये मियां मौलवी पंडे पुजारी इतना बीच में दरार डाल दिया समाज में कि वहम में भ्रम में पड़ के हम लोग उलझ गए। भगवान सब एक ही है, वही एक नाम का अंतर है, भगवान तो एक ही है ना। और फिर महाराज ने भी प्रसाद पाया, सत्संग हुआ, रहे 2-1 दिन, फिर आगे बढ़ गए। तो महाराज की निगाह में वो रहे ना, कौन हिंदू है कौन मुसलमान क्या। वो फकीर खुद बोला, बोले महाराज ये पंडा पुजारियों ने मियां मौलियों ने एक दरार डाल रखी है भगवान। भगवान तो अनिर्वचनीय है, वाणी से वचनबद्ध जिसे नहीं किया जा सकता है, तो नाम तो मनुष्यों के विविध एंगल से उनकी विभूतियों का चित्रण किया गया है। घट घट में रमण करता है राम, ओ माने वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है, सारी विभूतियों से युक्त है तो विभू, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु, करोड़ नाम लो पूरा नाम एक भी नहीं, जब अनिर्वचनीय है तो निर्वचन कैसे कर दोगे। बहुत खुश हुए, फिर सत्संग हुआ, फिर आस्ते आस्ते भजन की विधि पूछा, श्वास का जाप कैसे करें, सुमरण कैसे करें, ध्यान कैसे दें, फिर इसको सत्संग के उपरांत महाराज आगे बढ़ गए, पहुंच गए आगरा। आगरा में जमुना किनारे बालुई में बैठ गए, रात दिन वहीं पर। महाराज का नियम सदैव एकांत में, बाजू में कुटिया है तो कुटिया में नहीं जाए, उनको रात्रि विश्राम के लिए कोठड़ी नहीं चाहिए, गद्दा तकिया नहीं चाहिए, एक से दो आदमी नहीं चाहिए, उनको एकांत चाहिए। तो वे बातों में बस बैठे भजन कर रहे थे। सुबह ब्रह्म भेला में आगरा की गलियों से कुछ माई लोग निकली और जमुना की ओर बढ़ने लगी भजन गाते हुए, इतने हीरो सो जन्म गा मायो भजन बिना बावरो, तूने हीरो सो जन्म गा मायो भजन बिना बावरो, कदे न आयो साधु शरण में कदे न हरि गुण गायो, ओ पच पच मरियो बैल की नाई सोये रहो उठी खायो भजन बिना बावरो, तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिना बावरो। महाराज के इतना मधुर लगा, फिर आगे वो पूरा गा ले गई। हम बहुत कोशिश किए हमें याद हो जाए, लेकिन ये डेढ़ लाइन ही याद हो पाई। हम दिगंबर बाबा माई लोगों से पूछे तो कैसे पूछे, फिर हमारे मन की मने में रह गई। बाकी सब शरीर जितने हैं दुनिया के, ये जड़ शरीर है, कुत्ता कुत्ता ही है, गाय गाय है, पशु है, जड़ पेड़ पौधे, जड़ चेतन स्थावर, किसी योनि में ये सुविधा नहीं है कि आगे साधना करके नवीन निर्माण कर सके। देव योनि भी अपनी करनी के अनुसार उत्तम भोग भोगती है, नवीन साधना करके अपना कल्याण नहीं कर सकती। शीने पुण्य मृत लोकम विसंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर देवता भी मृत लोक में आके गिरते हैं, नवीन साधना करके परम श्रेय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्कर्मों के फल स्वरूप देवलोक में भोग अवश्य भोग लेते हैं, लेकिन भगवत स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए देवता लोग भी इस मानव तन से आशावान है कि प्रभु हमें भी ये दुर्लभ तन मिले। मनुष्य शरीर कर्मों का निर्माता है, भाग्य का रचयिता है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये दुर्लभ तन है, ये हीरा तन है, रतन तन है, तो तेने हीरो सो जन्म गा मायो भजन बिना बावरो, तूने हीरा जैसा तन मिला, खो दिया बगैर भजन के रे बावले, बावरे माने पगलंट, तो ये हीरा तन की सफलता कैसे प्राप्त होगी। भूल क्या कर दिया हमने कि कदे न आयो साधु शरण में कदे न हरि गुण गायो, तू कभी साधु की शरण में नहीं आया, तुमने कभी हरि का गुणानुवाद नहीं किया, गुणगान नहीं गाया। किया क्या? पच पच मरो बैल की नाई, सोय रहो उठी खायो, भजन बिना बावरो, तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। बोले डैडी लाइन याद हुई, इतना मधुर भजन, इतना प्यारा लगा। हम सोचे पूछ लेंगे हम दिगंबर बाबा, माई लोगों से कैसे बात करें, मन की मने में रह गई हो। जब महाराज महाप्रयाण को प्राप्त हुए तो हमने पता लगाया, जब जीवनी लिखने का समय आया तब तो जयपुर में ये भजन मिला। एक बुढ़िया माई गा रही थी, उसका कैसेट बन गया है, अमृतवाणी कैसेट। शाम के समय में सड़क पकड़ के घूमने जाए टहलने, कुछ ही दूर गए थे तो वहां गल्ला मंडी दिखाई पड़ गई। शाम को गल्ला मंडी बंद हो जाती है, गायें चल रही थी, कौवे उछल कूद कर रहे थे, चिड़िया इधर उधर उछल रही थी। कुछ न कुछ गल्ला मंडी में दाना गिर जाता है ना, वही खा रहे थे सब। चने पड़े थे उसमें, तो पड़ा चना वो आकाश वृत्ति कहलाती है। संत को कोई पड़े चने वने फसल हो, इसको सिलोच वृत्ति कहते हैं, खाने में कोई दोष नहीं है। तो महाराज चना उठा उठा के आप अस्त्र में बढ़ने लगे, दो दो चार चार दाना मुंह में डाल के खाने लगे। खाते गए भरते गए, जो फसल भर गई तब उठ के चल दिए और चले आए जमुना किनारे। जमुना किनारे आते आते हाथ हो गया खाली, चार चुल्लू पानी पी लिया और फिर भजन में बैठ गए। एक दिन तो वैसे ही बीता, लेकिन चार दिन यही भोजन रहा। और सेठ लोगों को संदेह हुआ कि पगलों को टाइम टेबल का ज्ञान नहीं होता, ये पागल नहीं हो सकते, ठीक 6 बजे कैसे आ जाते हैं, पगलों को तो घड़ी का ज्ञान होता ही नहीं। तो वो अपना दुकान बंद कर चुका था, फिर खोला और चने के बोरे में से चना निकाला एक मुट्ठी और महाराज के सामने ऐसे छितरा दिया। तो महाराज मुस्कुराए, ताके उसकी ओर और छोड़ के दूसरी तरफ चले गए जहां स्वाभाविक पड़े हुए थे। तो इसने इशारा किया उस बनिया को, उसने भी दरवाजा बंद कर चुका था, खोला निकाल के चना उसने भी छींट दिया। तो महाराज तीसरी तरफ बढ़ गए, वो भी खोल के छींटने का उपक्रम कर रहा था, मंडी छोड़ दिया चले गए। उस दिन चना ही नहीं बिना। फिर महाराज तो जमुना किनारे जाके वैसे ही बैठ गए। अब बनिया लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वहां पर जहां महाराज थे। जमुना किनारे दौड़ लगाए पा गए, किसी ने केला, किसी ने मिठाई, किसी ने लाके रख दिया। बोले भगवान इतने छिप कर रहेंगे महापुरुष तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे, हमरे हम लोगों के पूर्वजों का बनाया हुआ ये मंदिर है जमुना किनारे, ये 50-70 साल से उजड़ा पड़ा है, कोई पुजारी भी नहीं है, शांति है, एकांत है, कृपया इसी में रहा करें। तो समय पे आके थोड़ी सी तुझ सेवा करने का अवसर मिल जाए हम लोगों को, बड़ी श्रद्धा से ले गए बैठा दिया। तो शाम को तो सेठ लोग आया करें, कुछ न कुछ बाजार से, कोई मीठा, कोई केला, कोई सेव, कोई आगरा का पेठा लेके आवे, रख दे, दर्शन करे और घरे चले जाए। और दिन को 12 बजे सेठानियां आने लगी, फिर परिच गई विधिवत, पता नहीं क्या क्या भोजन बना के लावे फैलाए दे। पहले 2-4-6 आई, फिर 10 आई, फिर 15-20 तक हो गई। 1 घंटा जोन खुरापात करे महाराज के हो चेचू चेचू, फिर ढीठ हो गई। बोले महाराज हम औरतों के बीच में आप नग्न बैठे हैं, आपको लाज नहीं लगती? ये लो धोती पहन ले। उन्हीं के दो घर की दुकानें थी, उस टाइम सच्चा हीरा मिस्राइज कौन कौन धोती चलती रही, और बड़े लोग उसी को पहनते थे। अब तो तुम लोग पैंट के मारे धोती भूल गए हो। तो मिस्राइल सच्चा हीरा कौन कौन धोती ला के दे दे महाराज पहन लो। कोनो कोनो बुढ़िया उठे पहनाए दे और चली जाए। महाराज पहने पहने आवे जमुना किनारे, किसी को देखें साधु को भिकमंगा को उसको दे दे। 3-4 धोती बदल गई, दे दिया बांट दिया। तो बोले भैया जैसे रहे उन्हें रहने दो, इन्हें ने लाज है ने शर्म, इन्हें पहनी है। 4 धोती बदल गई तो फिर लाना बंद कर दिया। और सीटी के भगत चेत गए एक राधेलाल दलाल, कई करोड़ों लाख रुपया हार चुका था जुए में, पक्का सटोरिया था वो। लेकिन ये जुआड़ियों का सटोरियों का दिल बड़ा तगड़ा होता है, फिर छनंत फूकंत वैसे ही आवे, काफी कुछ मिठाई सिठाई रख दे। और महाराज 80,000 कर्जा हो गया, कुछ कह के चुपचाप चला जाए। एक दिन जमुना किनारे से महाराज आ रहे थे, रास्ते में 5 का नोट पड़ा था। भगवान ने आदेश दिया इसको उठा लो। बोले प्रभु हम क्या करेंगे पैसा, ये 5 का ही कगजुआ हम का करें? तो आस्ते से पता नहीं कैसे किसी लकड़ी से छुआ के ला के वो रख दिया। बोले राधेलाल को दे दो। राधेलाल से कहा ले पैसा ले ले। बोले अरे गुरु महाराज हम क्या करेंगे 5 का नोट, वो लखपति आदमियों के 5 का नोट तो कुछ होता ही नहीं। बोले भगवान का ले लो, नहीं लिया तो झाड़ू लगा कोई ताखे में रख दिए। राधेलाल का इतना सा लड़का आया छोटा सा, बोले देख रहे झाड़ू लगा वहां सफाई कर ताखे में। बोले महाराज जी 5 का नोट, बोले ओ तू पा गया ले ले, मूंगफली सूंगफली कुछ खा ले। बोले अब ला के गया कुछ खा गया, अब राधेलाल पा गया, लड़का खा गया तो पा गया। तो महाराज को अनुभव में आया कि इसका कर्जा तो खत्म हो गया। महाराज ने कहा देख अब हम जा रहे हैं यहां से, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम उसका सत्पुरुषों को दान करना तो टिकेगा तुम्हारे पास, नहीं तो नहीं टिकेगा। वो फिर जुआड़ी जब जुए में खेला, पैसा लगा बढ़ने, तो फिर जो पाया वो भी खेल दिया। एक 10 दिन में 80,000 रुपया पा गया। और फिर महाराज के जो पावे पुराना कर्जा वो 80 चूक गया, फिर भी 80 बच गया, कर्जा भी खत्म। अब लगा दान करने, जितने आगरा के झाड़ू लगाने वाले भंगी थे डुमार, उनको बुला के लगा शराब पिलाने, खुली दावत। अब मुर्गा अंडा शराब सुअर काटने लगे, खाने लगे। जय हो राधेलाल की। गुरु महाराज जब अंशिया में स्थायी हो गए तब भटकता हुआ राधेलाल अनायास वहां पहुंच गया। उसे नहीं मालूम था कि महाराज यहां विराजमान है। निगाह पड़ी तो प्रणाम किया, बोले महाराज आपने कहा था तुम्हें मिलेगा, मिला भी। हमने खूब दान पुण्य किया फिर भी क्षमा खो गया, फिर भी मैं कंगाल हो गया। बोले दान पुण्य किसको किया? बोले डुमारन के, और शराब पीते रहे। बोले हमने कहा था सतपुरुषों को, सतपात्रों को दान करना, तुम्हें मालूम है कुपात्र को दान करने से दाता नष्ट हो जाता है। हमने दबाव देखे कहा तो सतपात्र को दान देना, दान अधिकारी को दिया जाता है, अब इसीलिए नष्ट हो गया। जा कमाखा, प्रणाम किया और चला गया। कुपात्र के दान देने से दाता नष्ट हो जाया करता है। फिर प्रणाम किया और चला गया। आगे जब तक जिया बराबर समाचार भेजता रहा श्रद्धा भक्ति से, फिर जीने लगा दान सुपात्र को। महाराज कहें सब दानी तो बने हैं, 50 रुपया देते हैं तो बदले में हाथी मांगते हैं। असली दाता मैं हूं जो मोक्ष देता। एक दिन एक बुआजी रही हो, मोहल्ला भर आगरा के जितना सेठ परिवार रहा सब बुआजी ये कहा करें 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी वहीं रहा करें, 10-6 नवीन लड़कियां पीछे घुमा करें बुआजी के, घुमा करें वो भी दर्शन करें आवे भीड़ में और चली जाए। एक दिन अकेली बुआ जी आई, गठड़ी ला के रख दिया 6,000 चांदी का रुपया। एक गठड़ी में जेवर उतना ही बड़ा ढेर, दो ढेरियां रख के बोले महाराज इतना धन है मेरे पास, कहीं बैंक में जमा कर देंगे, मैं रोटी बना दिया करूंगी और आप भजन करना, कहीं कुटिया बना लेंगे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं संत की तलाश में थी कोई मिला ही नहीं, आप महापुरुष मिल गए महाराज हम भी चलें। महाराज क्या हो गंगा जमुना किनारे नंगे पांव घूमते घूमते भगवान चप्पल खड़ा हो पहनने ही नहीं दे, इसलिए नंगे पांव थे। बियाई फट गई पांव में, बियाई फट जाने का मतलब उसमें से खून चक चक्का आता है पांव के तलवों में, और उस खून जहां चक चक्का है तो उसमें जो बालू के कण पड़ते हैं तो गोली की तरह लगता है। नंगे घूम के देखो ना जाड़े भरे में फट जाए सबके। हमारे फटी हम जानते हैं, तो वो जब कण पड़ जाए बालू के तो गोली की तरह लगे, तो हमारे महाराज के फटी रही, चलने में कष्ट होता है, ठीक ही तू कह रही है। उससे तो महाराज ने कुछ नहीं कहा, मन में ये भाव आया ठीक ही तू कह रही, दो रोटी बना देगी और कहीं बैठ के भजन करी हूं। मन में थोड़ा सा कुतर्क आया, महाराज ने कहा कुछ नहीं, विचार भी कुछ नहीं, विकार भी कुछ नहीं, मन में थोड़ा कुतर गया, चलत चलत थक गया, वो अपन गठड़ी सटली लेके चली गई। माई लोगों की बड़ी बुद्धि होती, इस भाव भंगी माँ को पढ़ ले गई, चली गई। उसी दिन सत्संगी महाराज, गुरु महाराज के गुरु महाराज, जहां रात को 2 बजे उठ के महाराज भजन बैठे तहां पहुंचे, 2 पंडित लेके पीले वस्त्र पहने, पंडित तिलक लगाए, जनेऊ पहने पीली मंत्र उच्चारण करते हुए चले आ रहे हैं और सत्संगी महाराज डंडा खटखटाते हुए चले आ रहे। धैत थोड़ी ढोंगी का है बकला ध्यान लगा के बैठा है रे। आंख मुदले से काम चली उठ गया से पकड़ो रे एक सारे का नहलाओ इसको। अब तो पंडित लोग फिर नहलावे गंगा जल डालें और महाराज के हो दुका दुका मंत्र पढ़े। महाराज के लिए अब संस्कृत पढ़ो तमक्षरम परमम वेदितव्यम तो पढ़े लिखे थे नहीं। महाराज के हो दुका दुका मंत्र पढ़े फिर पानी डालें फिर दुका दुका मंत्र पढ़ें फिर पानी डालें और फिर बाद में सत्संग महाराज बोले उठ भाग इसी वक्त भाग सार मेरिया लेके भागा यात्रा रे तुम्हारा कल्याण इसी में इसी वक्त भाग जाओ। बस महाराज को चेत हुआ ये जो दृश्य आया अनुभव 15 मिनट का था भाई इतने में आता ही है दृश्य जो अनुभव आता है बैठे बैठे आता उसका नाम सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव। शरीर जागता रहे मन भजन में सुप्त हो जाए लो लग जाए उस समय जो दृश्य आता है वो सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव कहलाता है। उस सपन नहीं होता ये ध्रुव काट्य होता है सच होता है। जहां मिला महाराज उठे तुरंत डर गए तुरंत उठे और चल दिए उसी वक्त चल दिए। चले जा रहे थे दो तीन लड़कों की निगाह पड़ गई रे संती जी जा रहे हैं वो भी पीछे लग गए। उतने दिन महाराज के रहनीस को देख के बहुत से लड़कों में वैराग्य जग गया था। तीन लड़कों की निगाह पड़ गई वो पीछे लग गए। हरिद्वार गए हर की पैड़ी पर उनको बहुत समझाया लौट जाओ बोले महाराज अब हम भी भजन करेंगे। हमने भले घर के थे तो उनको हर की पैड़ी पर सोए हुए छोड़ के महाराज आगे बढ़ गए। बटक बुटुक के ढूंढ ढांड के फिर घर चले आए। आना ही था और कहां जाते महाराज मिले ही नहीं। चढ़ गए ऋषिकेश के पहाड़ पर बद्रीनाथ के पथ पर। 5 महात्मा दम लगाने का उपक्रम कर रहे थे बड़ी वाली चिलम गांजा गठ रहे थे उसी में संखिया डाले थे। महात्मा लोगों के चिलम बड़ी कीमती होती है पता नहीं क्या क्या डालते हैं संखिया भी एक होता है बड़ा जहरीला पदार्थ बहुत नशा उसकी मात्रा कम ज्यादा हो जाए तो नशा बैकुंठे में उतरी रस्ते में कहीं नहीं तो उसको डाल दिया। गठा गठ रहे थे महाराज पहुंचे तो बोले आइए संत जी बैठिए आप भी दम लगाइए। तो वो सब तो तमाम गुदड़ी सुदड़ी गंजी कोट पहने हुए थे महाराज एकदम दिगंबर। महाराज सोचे बड़ी स्थिर की तरह हवा चल रही है थोड़ी दो फूंक खींच लेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी तो ठंडी थोड़ी रुक जाएगी। बैठ गए जहां चिलम तैयार हुआ तो महात्मा लोग खुद नहीं पीते पहले दूसरे को देंगे लीजिए संत जी चेताइए। तो एक बहुत लालायित था चिलम के लिए लपक के हाथ आगे बढ़ाया ले लिया और पकड़ के सुर 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 3-4 बार खींचा फिर करके खींचा चिलम इधर बाबा जी इधर मर गए। फिर श्वास लौट के आई ही नहीं और जो 4 बाबा जो बच्चे थे वो भर दिन उठ के भागे इतने अनचित्ते में भागे कि महाराजो कहे महाराज के मैं हूं उठ के भागे हूं 15 कदम तक मैं भागा फिर हम खड़े हो गए ये क्यों भाग रहे हैं और मैं क्यों भाग रहा हूं बात क्या है। देखा हो ये मर गया इसलिए भाग रहे हैं डर की वजह से। तब महाराज ने डांटा, बोले करे साधु हो कि भाड़ हो, मर गया तो क्या हो गया, हम पीते हम मर जाते, तुम पीते तुम मर जाते, ये कोई अपराध है? ये तो जरा सा नशे में संख्या ज्यादा हो गया और क्या हो गया, भागना मत, नहीं तो अभी पुलिस थाना पास में रिपोर्ट करके सबको पकड़वा दूंगा, चलो आओ इधर। तब सब लौट आए, गांव पास ही में था, बुलाए गांव वालों को, पंचायत पत्र पे दस्तखत कराया, लिखा पढ़ी करके उनकी अंत्येष्टि करवाया, फिर वो चारों महात्माओं के दंडोत महाराज अब चलो अपने रास्ते, हम कहां फंस गए यार तुम लोगों के बीच में। और इधर एक रास्ता दिखाई पड़ रहा था, महाराज भक्तों की आजकल साधु जाते हैं, बोले वहां जाएंगे तो चाय पानी मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, ऐसे नहीं चलते थे, जिधर मुंह उधर चल दिया, सारी भूमि गोपाल की। ये निराधार विचरण का यही तरीका गुरु महाराज का था, यही हम लोगों को सिखाया गया था, लेकिन हमसे नहीं पार लगा और सबसे पार लगा। सब महात्मा सादर विदा हो गए, गांव वालों ने पंचनामा करके उल्लास अंत्येष्टि करवा दिया, फिर वो लोग अपना संभाल लिए, गांव वाले बोले संत जी का हम लोग करेंगे, क्या होता भंडारा संडारा, महाराज उनका साथ छोड़ दिया। एक सड़क दिखाई पड़ी साफ सुथरी, उसी को पकड़ लिया। महाराज ने सोचा कि सड़क है तो कहीं गांव ग्राम भी होगा, चल दिए अनजाने पथ पर, और भी जंगल घना होता चला गया, क्योंकि वो फॉरेस्ट रोड थी, वन विभाग की बनवाई हुई सड़क थी, वो गांव ग्राम था ही नहीं। हाथियों की ताजी लीद मिलने लगी, देहरादून में हाथी बहुत थे, आज भी हैं, बढ़ते ही चले गए, शाम हो गई। एक घना पेड़ रोड किनारे उसके नीचे बैठ गए, बाजू में हाथियों की लीद भी पड़ी थी, हाथियों का झुंड घुमाई करता था वहां। जो बैठ गए तब भगवान ने रात में अनुभव में आदेश दिया, तुम कहते थे चलते चलते थक गए, वो बुआ जी के समय में यही तो सोचे रहे एक बार चलते चलते थक गए, कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ के भजन करते कुटिया हो जाती, ये संकल्प आया था ना, तुम कहते थे कहीं रुक जाते ठीक रहा, रुको फिर यहीं रुको, यहां तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, भगवत स्वरूप में स्थिति मिलेगी, यहां तुम्हें ये सिद्धियां मिलेगी, यहां पत्ते पत्ते पर लट्टू लग जाएंगे, यहां तुम्हारे द्वारा लोगों का बहुत कल्याण होगा, यहां तुम्हें सदुवाई की जो स्थितियां सब उपलब्ध होंगी, रहो यहीं पर। रहना चाहते थे ना एकांत, निजी कुटिया में रहना चाहते थे, रहो फिर यहां पर। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया, न पानी पीने का न खाना खाने का, न महाराज को प्यास लगी न भूख लगी, तो लगे ही ना, देहरादून ठंडा एरिया है। चौथे दिन भगवान ने कहा देखो ठीक वैसा ही होगा जैसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी एक सिपाही दूध लेके आएगा, दूध पीना भर मत, सब ठीक यथावत होगा, केवल एक बात से सावधान रहना, सिपाही का दूध मत पीना, इतना भर ध्यान रखना पक्का। महाराज ने सुन लिया, फिर करीब करीब भूल गए, चित से उतर गया। बड़े सवेरे सिपाही दूध लेके पहुंचा, भगवान प्रणाम किया सादर, बोले भगवान दूध ग्रहण कर लें, आधा किलो दूध एक कटोरे में। तब महाराज को याद आया भगवान ने कहा था कि सिपाही दूध लेके आएगा वो पीछे पड़ेगा, पी लो तुम, पीना भर मत। तो सब यथावत वैसे ही होगा, या कुटिया मिलेगी, स्वरूप मिलेगा, स्थिति मिलेगी, सिद्धियां मिलेगा, लोगों का बहुत कल्याण होगा, पत्ते पत्ते में लाइट लग जाएगी। इससे कैसे कहें कि भगवान ने मना किया? कोई कैसे विश्वास करेगा कि भगवान भी बोलते हैं और मना करते हैं? तो बोले देखो, दो चार महीना बाद तुम कुछ भी लाओगे हम ले लेंगे, अभी हम ने भूखे हैं ने प्यासे हैं। हमारा यही नियम है, यही व्रत है जो हम कर रहे हैं, हमारी चिंता छोड़ो, तुम चले जाओ अपना दूध दूध लेके, उठो यहां से भाग जाओ, हम बिल्कुल ठीक हैं, भूखे हैं ने प्यासे, हमारा यही व्रत है, यही नियम है भजन का। तो वो बोला भगवान हम लोग इतने पाप किए हैं, मैं इसी जंगल का सिपाही हूं, जब आप जंगल में प्रवेश किए तब से आप पर दृष्टि गड़ाए हुए हूं, आप यहां आके बैठ गए, रोज दूर नजदीक से देख लिया करता हूं, चार दिन से आप कहीं गए नहीं, ने प्रसाद पाया ने कहीं पानी पिया, हम लोग इतने अभागे हैं महाराज, छोटी सी भेंट भी नहीं स्वीकार करेंगे तो हम अभागों का कल्याण कैसे होगा। वो अटर बटर कुछ न कुछ बोलता ही चला गया एक घंटा। तो उससे जीव छुड़ाने के लिए, महाराज के पीने का मन भी नहीं था, जीव छुड़ाने के लिए झुंझलाहट में कटोरा उठाया और पी गया। बोले भाग यहां से, शुद्ध खोपड़ी खा गया एक घंटे से, गंवार कहीं का समझे न बूझे। वो सादर प्रणाम किया चल दिया, अभी गेट तक भी नहीं पहुंचा था तब भगवान ने डांटा, बोले कहा था ना दूध मत पीना, पी लिया, भागो यहां से, यहां कुछ भी नहीं होगा, अब मना किया मत पीना, पी लिया, तुम्हारे अंदर अभी क्षमता नहीं रहने की, इसलिए अब या न तुम्हें कुछ मिलेगा न स्वरूप मिलेगा न सिद्धि मिलेगी, भाग यहां से। महाराज कहे हो, पेट भर खायो का नहीं मिला, दो पौवा दूध के पीछे सिद्धियां गई, प्राप्ति गई, सब कुछ गया, तो रेख लांग सी बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। लक्ष्मण ने कहा रे माता जी, रेखा पार मत करना, थोड़ी सी जहां रेखा पार किया तो रोने को आंसू नहीं मिला, लंका में पड़ी रोते रह गई। तो भगवान जो सीमा रेखा निश्चित कर दे, साधक को उसको अक्सर से पालन करना उस समझ में आवे चाहे न आवे, वास्तव में भगवान के आदेश का पालन ही भजन है। भगवान कल क्या बीतेगी उसको जानते हैं, तुम आज की देख रहे हो। भगवान कह दे ये आम का पेड़ है तो तुम्हें आम ही मिलेगा, भले ही वो पीपल का क्यों न हो। भगवान कल की देख रहे हैं, तुम आज की देख रहे हो। महाराज क्या हो, भगवान पेट भर खायो का नहीं मिला चार दिन बाद, और भगवान चुतरे पे डंडा मार के मौके भगा दिए। बेटा आज्ञा पालन ही भजन है और कोई भजन नहीं, सारी साधना वही है, साधना में जो प्रगति अगति वो आज्ञा पालन। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।